पद्मिनी, हाय राम, मुन्ने ने तो गुड़ियों का बुरा हाल कर दिया। वो भी तो बहुत पुरानी गई हैं, और कितने दिन चलेंगी? भीतर देखकर सुनना, देवदत्त प्रवेश करके, क्या? पद्मिनी, मुन्ने के लिए नई गुड़ियां लानी चाहिए, ये तो चिथड़े हो गई हैं। देवदत्त, अच्छा, मेरा ध्यान नहीं गया था। पद्मिनी, 4 दिन बाद उज्जैन में मेला लगेगा, वहीं से 2 बढ़िया गुड़िया ले आओ, आज ही चल दो तो वक्त से पहुंच जाओगे। कहते हैं फटी हुई गुड़ियों से शगुन बिगड़ता है। गुड़िया एक दूसरी से, सुना तूने? मैंने कहा सुना तूने? हमें फिकवाने पर तुली है। गुड़िया दो, नई गुड़िया चाहिए। गुड़िया एक, पतुरिया कुतिया। गुड़िया एक, उसका घर उजड़े। गुड़िया दो, उसके दांत टूटे। देवदत्त पद्मिनी से, ठीक है। दोनों गुड़ियों को पीछे से पकड़कर उठाता है। गुड़िया एक, देख देख कैसे उठा रहा है, जैसे हम कुत्ते के पिल्ले हों। गुड़िया दो, यह सनीचर यहीं रहेगा झूले में और हमारे लिए घूरा। देवदत्त, उज्जैन आने जाने में 7-8 दिन तो लगेंगे ही, तुम दोनों को अकेले छोड़कर जाना मुझे ठीक नहीं लगता, किसी पड़ोसी को पैसा देकर क्यों न मंगवा लें। गुड़िया एक, नाशपीटे, हमें फेंकने से पहले अपनी दशा देख। गुड़िया दो, पहले अपनी लुगाई को तो ढक। पद्मिनी, दूसरे का क्या भरोसा, अपने मुन्ने के लिए गुड़िया हमें ही लानी चाहिए। देवदत्त, लेकिन। पद्मिनी, नहीं जाना चाहते तो वैसा कहो, पर। देवदत्त, अच्छा ठीक है, किसी नौकर से रात को यहाँ रखवाली के लिए कह दूं। पद्मिनी, कोई जरूरत नहीं, कोई जंगल में तो नहीं रहते। गुड़िया एक, अरे पगले, अब तो समझ से काम ले। गुड़िया दो, जाने से इनकार कर सीढ़ी। देवदत्त, जैसी तुम्हारी इच्छा, तो फिर चलता हूँ, होशियारी से रहना। गुड़ियों को घसीटता हुआ जाने लगता है। गुड़िया एक, अरे मूर्ख, तू डूबेगा। गुड़िया दो, तेरा घर बार चौपट हो जाएगा। गुड़िया एक, अंधे। गुड़िया दो, बहरे। गुड़िया एक, चांडाल। गुड़िया दो, राक्षस। देवदत्त गुड़ियों को घसीटता चला जाता है, गुड़ियों की चीख पुकार सुनाई पड़ती है, फिर एक नीरवता। पद्मिनी बड़ी देर तक देवदत्त के जाने की दिशा में देखती रहती है, फिर बच्चे को ऊपर उठा लेती है। पद्मिनी, आ बेटे, तूने अभी घने जंगल का जादू मेला नहीं देखा ना, चल दिखा लाती हूँ, वहाँ की बात क्या बताऊँ। बेटे, सूरज निकलने के पहले भी पहले पेड़ों की टहनियाँ धरती पर अल्पना रचती हैं, तारे आरती उतारते हैं, तब दिन निकलता है और तमाशा शुरू हो जाता है, फिर दिन भर नाच नाच नाच, बंदरों की बाजीगरी, कुक्कुटों की लड़ाई, मोरों का नाच, धारीदार शेरों का नाच, और नदी तल पर नन्हे पांव में चांदी की पायलें पहने सूरज का नाच। घने जंगल के बीचों बीच संकेश्वर फूल का रथ सजा है, सोने का रथ है बेटे, जिसे झुंड के झुंड पक्षी खींचते हैं, अनगिनत पलाश वृक्ष लाल मशाल थामे बंदगी करते हैं, फिर धीरे से रात घिरेगी, मुन्ने को निंदिया आवेगी, और बस एक ही फूंक में चांद बुझ जाएगा। पर लौटने के पहले एक काम और, वहीं पास मेले के बाहर एक कोने में सुहाग के फूल का पेड़ खड़ा है, पुराना पेड़ है, हमारा गहरा बंध, बड़ा प्यारा है, हम उससे बातें करेंगे, नमस्ते कहेंगे, ठीक है ना बेटे, अब चलो। आया रे सवार गीत का की कड़ी गुनगुनाती हुई बच्चे के साथ चली जाती है। थोड़ी देर के लिए मंच पर नीरवता, फिर कपिल आता है, वह नाटक के शुरू वाला कपिल बन गया है। भागवत, कौन? कपिल। कपिल, हाँ। भागवत, बरसों हुए तुमसे मिले। कपिल, हाँ। भागवत, इतने दिन कहाँ थे? कपिल, यहीं जंगल में। भागवत, यहाँ इस जंगल में विश्वास नहीं होता, यहाँ मनुष्य भी रह सकते हैं? कपिल, पशु रह सकते हैं तो मनुष्य क्यों नहीं? भागवत, क्या कर रहे हो वहाँ? कपिल, वनवास। भागवत, धर्मपुरी का कोई समाचार सुना है? कपिल, बहुत दिन हुए, पिताजी ने मुझे आने के लिए कहला भेजा था, मैंने उत्तर भिजवाया कि मैं नहीं आऊंगा और न आप ही इधर आए, बस। भागवत, यानी तुम्हें अभी पता नहीं कि तुम्हारे माता पिता दोनों स्वर्ग सिधार चुके? कपिल निर्लिप्त भाव से, नहीं। भागवत, पद्मिनी का बेटा हुआ है। कपिल, अच्छा। भागवत, अभी तक नाराज हो? कपिल, कैसी नाराजी? नाराजी। भागवत, तुम्हारे ढंग से तो यही लगता है। कपिल, वह सब निरी कविता है, जाता है। भागवत, कपिल, कपिल, कपिल मंच की एक परिक्रमा लगाता है और अपने स्थान पर आकर कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने का अभिनय करता है। कपिल का बिना आवाज लकड़ी काटने भर का चित्र दिखाई देता है। उसी समय बच्चे के साथ पद्मिनी आती है। बच्चा गोद में सोया हुआ है, वह डरी हुई है, पर ज्यों ही कपिल को देखती है जड़वत हो जाती है, मुंह खुला का खुला रह जाता है। कपिल का ध्यान पहले नहीं जाता, पर जब देखता है तो उसकी उठाई हुई कुल्हाड़ी आकाश में ही टंगी रह जाती है। वह निश्चल निर्जीव सा खड़ा रहता है। कपिल फटे स्वर में, तुम? पद्मिनी निश्चल, हाँ। कपिल, यहाँ? पद्मिनी, हाँ। मेरा बेटा नहीं जानता था कि नदी के साथ कोई कैसे हंसता है, ठंडी हवा में कैसे कांपता है, पाँव में कांटे कैसे चुभते हैं, वह सब दिखाने के लिए ले आई। मैं जंगल में भटक गई। कपिल, लेकिन इतनी दूर नहीं भटकना चाहिए था। पद्मिनी, गलत राह पाँव से नहीं छूटी, चिपकी रही। कपिल, इतनी दूर नहीं भटकना चाहिए था, जंगली जानवर, चोर, लुटेरे, राहहीन रास्ते, तरह तरह के खतरे हैं। पद्मिनी, सब लोगों से राह पूछती आई, गांव वालों से, यात्रियों से, शिकारियों से, वनवासियों से, कभी कभार अपने मन से भी, लेकिन सब ने यही कहा कि गलत राह छूटे नहीं, चिपकी ही रहे। विराम। कपिल, यह तुम्हारा बच्चा है? पद्मिनी, हाँ, और तुम्हारा भी। कपिल, मेरा? पद्मिनी, तुम्हारी ही देह का प्रसाद है। कपिल, मेरी देह? हिंस भाव से, मेरी नहीं, मैं कपिल हूँ पद्मिनी। उस दिन मैंने नहीं माना था, पर आज मानता हूँ, मैं कपिल हूँ। पद्मिनी धीरे से, कैसा कपिल? कपिल उत्तर नहीं देता, भागवत गाता है। भागवत गाकर, पंख खोले धरती को ठुकरा कर ऊपर उड़ा, दसों किनारे सातों खंड घूमा, मापा आकाश और अंत में देखा, तेरे वक्ष पर बच्चा है, जंघा बीच पर आँखों में मशाल और कौमारे के देर से खुले ओठों पर सुहागिन का जहर है। मैं यहाँ एक चित्र, वहाँ एक भाग्य लेख बीनता हूँ और दोनों गटक जाता हूँ, ज्योत क्या बंदी पंछी हूँ। मौन। कपिल, बच्चे को देखूं? पद्मिनी, दिखाने के लिए ही तो आई हूँ। कपिल बच्चे का मुंह देखता है। कपिल, मुझे क्या हो गया, इतनी दूर से आई हो? पर मैंने बैठने को भी नहीं कहा, भीतर जाकर थोड़ा विश्राम कर लो। पद्मिनी भीतर जाती है, कपिल भ्रमित सा खड़ा है। पद्मिनी बच्चे को सुलाकर बाहर आती है। क्यों, विश्राम नहीं करोगी? पद्मिनी, नहीं, जरूरत नहीं, लंबा विराम। कपिल, कैसी हो? पद्मिनी, अच्छी हूँ, रोग ताप चिंता कष्ट कुछ नहीं। कपिल, बच्चा तुम्ही को पड़ा है? पद्मिनी क्षण भर रुक कर, फिर हंसती हुई, और तुम्हें भी? कपिल निरुत्तर है। तुम्हारी बांह जैसा तिल उसकी बांह पर भी है। कपिल, कौन सा तिल? पद्मिनी पास जाकर छूकर दिखाते हुए, यही, और कौन सा? तुम्हारी बांह पर एक ही तो तिल है। कपिल, ओह, ध्यान नहीं गया था, इस शरीर की ओर देखना ही छोड़ दिया है। पद्मिनी, इससे इतनी विरक्ति हो गई है? उत्तर नहीं मिलता। इतना क्यों सताया इसे, हाथ पकड़कर? यह शरीर जब तुम्हें मिला था तब कितना कोमल था, किसी राजकुमार के शरीर की तरह ये बाहें कितनी पतली और गोरी थी। अब उन्हें देखो, यह तुमने क्या हाल कर रखा है अपना। कपिल हाथ छुड़ाकर, जब यह शरीर मुझे मिला था तो यह मेरे सिर से लटकती लाश की तरह था। ब्राह्मण की दुर्बल उजली काया जंगल के लिए नहीं बनी थी। कुल्हाड़ी उठाता तो हाथ थक जाते, दौड़ता तो घुटने दुखने लगते। मेरे लिए यह शरीर किसी काम का न था। जिस घड़ी यह शरीर मुझे मिला उसी घड़ी से उसके बीच और मेरे बीच युद्ध छिड़ गया। पद्मिनी, कौन जीता? कपिल, मैं। पद्मिनी विषाद भरी मुस्कान के साथ, हमेशा मस्तक ही जीतता है ना? कपिल, हाँ, इसे भाग्य समझो। अब कोसों दौड़ सकता हूँ, बरसाती बाढ़ में भी कूद कर तैर सकता हूँ, बड़े से बड़ा पेड़ गिरा सकता हूँ। शुरू में पेट सांस नहीं देता था, पर अब जो भी मिले पचा लेता है, नहीं मिलता तो भी रोता नहीं। पद्मिनी, क्या हमेशा मस्तक ही जीता करेगा? कपिल, ध्यान न देकर, इसीलिए तो अब मैं कपिल हूँ। कपिल, ऐसा कपिल जिसका चेहरा उसके शरीर से मेल खाता है। पद्मिनी, अदला बदली हेरा फेरी याद है वह गीत जो हमने काली के मंदिर में गाया था? कपिल, अब उसे क्यों सुनाती हो? पद्मिनी, यूं ही याद आ गया, मुझे बार बार याद आया है, यह पंक्ति मेरी आत्मकथा ही बन गई है। कपिल देवदत्त, कपिल देही देवदत्त, देवदत्त शरीरी कपिल, एक जन्म जन्म एक पुरुष चार। कपिल, सहसा तुम उसे छोड़ क्यों आई? पद्मिनी, धीरे से, तुम्हें कैसे समझाऊं? कपिल पद्मिनी मूर्तिवत हो जाते हैं। भागवत पद्मिनी की पंक्तियों को उसी प्रवाह में सुनाने लगता है। भागवत, तुम्हें किस तरह समझाऊं? सुनो देवदत्त, अगर रातों रात बदल कर अपना पहले जैसा रूप धारण कर लेता तो मैं तुम्हें एकदम भूल जाती, पर ऐसा नहीं हुआ। वह हर दिन बदलता रहा, एक एक अंगुल एक एक रुआं धीरे धीरे सरकती रेत की तरह, घड़े में भरते पानी की तरह, उसे धीरे धीरे बदलते देखकर मैं भूल न सकी। यह सब पद्मिनी को कपिल से कहना चाहिए था, उसे और भी कई बातें कहनी थी बिना कुछ छिपाए। कपिल, यदि उस ऋषि ने मुझे तुम्हें सौंपा होता तो मैं तुम्हें छोड़कर देवदत्त के पास भी किसी दिन इसी तरह चली जाती, लेकिन पद्मिनी कहती नहीं, चुप रहती है। कपिल, तुम यहाँ क्यों आई? पद्मिनी, तुम्हें देखने। कपिल, क्यों? पद्मिनी उत्तर नहीं देती। कपिल, क्यों? मैं इतने दिन अपने से जूझते जूझते समझने लगा था कि मैं जीत गया, ऐसे समय तुम यहाँ क्यों आई? जब मैं इन यादों को जैसे तैसे उखाड़ फेंकने में सफल हो चुका था, तब क्यों तुमने मेरा पीछा किया? अब मैं कपिल हूँ, जंगली बेरहम कपिल, अपने शरीर और सिर के बीच की दरार को मिटा देने वाला कपिल। अब तुम क्या चाहती हो? एक और एक सिर और एक आत्महत्या? मेरी बात सुनो, तुम अभी यहाँ से वापस चली जाओ देवदत्त के पास, वही तुम्हारा पक्ष है, इस बच्चे का बाप। अब यहाँ अपना जाल मत बिछाओ। देवदत्त और पद्मिनी अग्नि के साक्षी से बंधी जोड़ी, जहाँ मेरी कोई जगह नहीं, कोई शांति नहीं, कोई मुक्ति नहीं, जाओ मुझ पर दया करो। हाथ जोड़ता हूँ, जाओ। दीर्घ मौन। पद्मिनी, धीरे से, जाती हूँ, तुम कहते हो तो जाती हूँ। कपिल, लगभग कराहते हुए, हे ईश्वर। पद्मिनी, क्या हुआ? कपिल, कुछ नहीं, और एक याद, जब मुझसे भी जाने को कहा गया था। हाँ, तुम भी जाओ अभी। पद्मिनी, जाती हूँ, पर एक छोटी सी विनती है। मेरा बेटा थका हुआ है बेचारा, वह सोया है, थोड़ी देर उसे सोने दो, उसके जागते ही चली जाऊंगी। हंसकर, तुम जीत गए कपिल, देवदत्त भी जीत गया, लेकिन मैं दो शरीरों की अर्धांगिनी, मेरे लिए न जीत है न हार। नहीं नहीं, कुछ मत कहो, मैं जानती हूँ क्या कहोगे। मैं स्वयं अपने से हजार बार कह चुकी हूँ, भूल मेरी ही है, मैंने ही की, सिरों की अदला बदली मैंने ही की थी, जिसका फल अब मुझे ही भुगतना चाहिए, मैं ही भुगतूंगी। भूल हुई मैं इतनी दूर आई, चलने से पहले मैंने सोच नहीं सकी, पर अब जब आ ही गई हूँ तो थोड़ी देर कम से कम बच्चे के जागने तक तुम्हें आंख भर देख लूँ, कुछ बोलूंगी नहीं, चुपचाप बैठी देखती रहूंगी। दीर्घ मौन। कपिल, अब तुम चुपचाप बैठी रहो या लौट जाओ, कोई अंतर नहीं पड़ता, बिगाड़ जो होना था सो हो ही गया, मैंने उन रूपहीन यादों को तो कहीं अतल में दबा रखा था, अब तुमने फिर उन्हें अपने नाखूनों से कुरेद दिया। पद्मिनी, पर कुछ भी दबाया क्यों जाए? कपिल, क्यों नहीं, इस अधूरेपन के पागल नाच को क्यों झेला जाए? पद्मिनी, कौन सा अधूरापन? कपिल, अपना। पद्मिनी, तुम्हारा? कपिल, हाँ मेरा, इस शरीर को चाहे जितना दबाओ पर उसमें छिपी यादें नहीं मिटती। आश्चर्य की बात है न कि शरीर की भी अपनी अलग यादें होती हैं, अपने अलग प्रेत, कुछ छूने की याद, किसी के स्पर्श की याद, किसी को बाहों में भरने की, इस हथेली से दबी किसी गर्म देह की यादें जो पहचानी नहीं जाती, समझ में नहीं आती, जिन्हें नाम तक नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जब वह सब हुआ तब यह सिर नहीं था। पद्मिनी, कपिल। कपिल शांत भाव से, तुम क्यों आई? तुम आई मुझे छुआ, मेरा हाथ थामा और मेरे शरीर को तुम्हारे स्पर्श की याद हो आई। मैंने तुम्हें कभी नहीं छुआ, पर यह शरीर, यह निर्लज्ज शरीर तुम्हारा स्पर्श पाते ही खिल उठा, जैसे अपने पुराने मित्र को गले लगा लिया हो। पद्मिनी पास आकर, बेचारे कपिल। कपिल कड़ाई के साथ, दया मत दिखाओ। पद्मिनी, चुप रहो पगले, तुम्हारे शरीर ने किसी नदी में स्नान किया, सुख भोगा, तो तुम्हारे मस्तक को यह नहीं जानना चाहिए कि वह नदी कौन सी थी, उसका बहाव कैसा था। तुम्हारा सिर भी उस नदी में डुबकियां ले, नदी का प्रवाह तुम्हारे बालों को सराबोर कर दे, उसकी जीभ तुम्हारे कानों में घूमे, तुम्हारे चेहरे को अपने सीने में कस कर दुबका ले, जब तक यह नहीं होता तुम अधूरे ही रहोगे। कपिल सिर उठाकर देखता है, पद्मिनी बड़े प्यार से कपिल के मुख पर हाथ फेरती है और आंखें भर कर उसके वक्ष पर अपना शीश टिका देती है। कपिल प्यारे, मेरे प्यारे कपिल, बेचारे कपिल, अपने आप को बेकार तुमने सताया। कपिल कुछ नहीं कहता, थोड़ी देर रुकता है, फिर पद्मिनी को घेर कर खींचता हुआ भीतर चला जाता है। भागवत गाकर, पानी पर लकीर नहीं खींची जाती, तलवार से घाव नहीं हो सकता है, तभी तो नदी को यादों का डर नहीं। गायिकाएं गाकर, नदी जानती है केवल प्रपात का खिंचाव, वह किलकती है, घास को गुदगुदाती है, बहाव का कसाव तोड़ भंवर के आवर्तों में सूखे पत्तों को लट्टू की तरह नचाती है, रुपहली जाली में पनीले सांप बुनती है, बांस की पत्तियों के काई भरे गलीचे पर मेंढकों को चौंकाती है, नाचती है, फुदकती है, उछलती है, गाती है, बड़े वेग से छल छल बहती जाती है। भागवत गाकर, पर किनारे पर खड़े काक भगोड़े का सिर के मटके पर धुंधला सा चेहरा है और देह पर हजारों यादों के आघात हैं। देवदत्त एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कपड़े की बनी हुई दो गुड़ियां लिए प्रवेश करता है। कौन? देवदत्त। देवदत्त, यहाँ कपिल का घर कहाँ है? भागवत, वह घर, हाँ वह घर, पर तुम कैसे हो? देवदत्त, नहीं चाहते तो न बताइए, मैं ही खोज लूंगा। भागवत, उधर उस पेड़ के पीछे। देवदत्त, पद्मिनी को आए कितने दिन हुए? भागवत, 4-5 दिन। देवदत्त आश्चर्य से, मुझे एक मर्द को भी रास्ता कठिन लगा, पर वह कितनी जल्दी आ पहुंची, गोद में बच्चा होने पर भी। भागवत, देवदत्त। देवदत्त भागवत की परवाह किए बिना आगे जाता है और रंगमंच की परिक्रमा लगाता है। देवदत्त आगे बढ़ गया, उसके मस्तिष्क में दो ही शब्द मंडरा रहे हैं, कपिल और पद्मिनी, कपिल और पद्मिनी। ये शब्द बाढ़ की तरह देवदत्त को कपिल की झोपड़ी तक बहाए लिए जाते हैं, लेकिन यह क्या, वह रुक गया। अब तक वह कपिल के खून का प्यासा था, अब एकाएक क्यों नरम क्यों पड़ गया, कपिल को आवाज भी नहीं दे पाता। कपिल बाहर निकलता है और देवदत्त को देखकर रुकता है। कपिल, आओ देवदत्त, तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी, कल से ही हर घड़ी बाहर आता यह देखने कि तुम शायद आ गए हो, भय से नहीं बस उत्सुकता से। पद्मिनी बाहर आती है, मौन खड़ी होती है। कपिल देवदत्त से, तुम तो वैसे के वैसे ही दिखते हो। देवदत्त हंसकर, तुम भी। कपिल तलवार की ओर संकेत कर, यह क्या है हाथ में? देवदत्त गुड़ियों को दिखाकर, गुड़ियां हैं बेटे के लिए, मेले से लाया, घर पहुंचा तो कोई नहीं मिला, सीधा यहाँ चला आया। पद्मिनी आगे आती है, चुपचाप गुड़ियों को ले लेती है, फिर उन दोनों को अपने वक्ष से चिपकाए अपनी जगह खड़ी हो जाती है। कपिल, पहले थोड़ा विश्राम कर लो, फिर बातें होगी। देवदत्त सिर हिलाता है, क्यों नाराज हो? देवदत्त, अब नहीं, रुककर, मेरे शरीर ने तुम्हें बहुत कष्ट दिया। कपिल, हाँ वनवास के लिए नहीं बना था ना, इसलिए शुरू में प्रतिरोध किया और कुछ हद तक अपना बदला भी लिया। देवदत्त, कैसे? कपिल, याद है मैं तुम्हारी कविता पर, तुम्हारी कल्पना शक्ति पर मुग्ध था। मेरे लिए पेड़ का मतलब पेड़, आकाश का अर्थ आकाश ही था। तुम्हारे शरीर ने नई चेतना दी, नए शब्द दिए। ऐसी चेतना मैंने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। मैंने सहसा एक दो कविताएं भी घसीट डाली। बेशक निकम्मी ही हैं, दोनों हंसते हैं। कभी कभी मुझे उस सब से घृणा होती है जो तुम्हारे शरीर ने मुझे दिया था। देवदत्त, मैं तुम्हारा बल चाहता था, तुम्हारा जंगलीपन नहीं। तुम घृणा में जिए और मैं भय में। कपिल, नहीं, भय में तो मैं जिया। देवदत्त, अदला बदली, हेरा फेरी, बोल, बता दे कौन हारा। एक बात बताओ, तुम सचमुच पद्मिनी को चाहते हो? कपिल, हाँ। देवदत्त, और मैं भी। कपिल, जानता हूँ। देवदत्त, मौन। देवदत्त, क्या हम तीनों इकट्ठे नहीं रह सकते, द्रौपदी और पांडवों की तरह? देवदत्त, तुम्हें क्या लगता है? निरवता, पद्मिनी उन्हीं की ओर देखती हुई निश्चल खड़ी है। कपिल हंसकर, नहीं, नहीं हो सकता। देवदत्त, इसीलिए यह लाया, तलवार दिखाता है, जो अपने आप नहीं मिटता, उसे काट डालना होगा। कपिल, तुम्हें मुझे तुम्हारी देह मिली, बुद्धि नहीं। देवदत्त, कहाँ है तुम्हारी तलवार? कपिल, अभी लाता हूँ। कपिल भीतर जाता है, पद्मिनी देवदत्त को देखती है, पर देवदत्त और कहीं देखता रहता है। देवदत्त गाकर इंद्र के साथ सोमरस पिया, हंसे, हर्ष मनाया, और धरती पर लौटा तो दूर से देखा, पृथ्वी पर एक नई दरार पड़ी थी, बिल्कुल इंद्र की हंसी की तरह। कपिल तलवार लिए प्रवेश करता है, दोनों द्वंद युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। कपिल, अभी तक अभ्यास है? देवदत्त, नहीं, लेकिन तुमने तो इन हाथों को अच्छी तरह सिखाया था, और तुम्हें? कपिल, नए सिरे से सीखा, अब वह तेजी कहाँ? देवदत्त रुककर, कपिल सच पूछो तो आज इस बात का कोई महत्व नहीं कि तलवार चलाने में कौन ज्यादा होशियार है। कपिल, जानता हूँ। देवदत्त, इस द्वंद्व का एक ही परिणाम है। कपिल, हम दोनों को मरना होगा। देवदत्त, हाँ, हम दोनों को मरना होगा। कपिल, उस दिन महाकाली के मंदिर में हम दोनों ने कितने धैर्य से अपना अपना शेष काट डाला था, लेकिन आज किसका शेष, किसका शरीर, आत्महत्या या हत्या, कुछ समझ में नहीं आता। देवदत्त, इसीलिए आज दया करुणा की कोई जगह नहीं, न स्नेह की, न मित्रता की, बस जूझना है शेरों की तरह, मरना है सांपों की तरह। कपिल, उस दिन माँ काली के सामने जिस हाथ ने जिस मस्तिष्क को अलग किया था, आज भी वही हाथ उसी मस्तिष्क को काटे। दोनों लड़ते हैं यक्षगान के युद्ध की तरह, तलवारें टकराती नहीं, व्यग्र पद्मिनी का हाव भाव नृत्यवत होता है। भागवत गाकर, अखाड़ों में मुर्गों की तरह आंखों के डोरे से डोरे मिलाए, पंजे से पंजे उलझाए, हम दोनों नाचते हैं। जो कुछ जानता था सब मैं जानता हूँ, वह भी जानता है। इस डाकनी का गला सूखा हुआ है रक्त के लिए, इसलिए यह जमी हुई दर्द भरी मुस्कान चटक कर धरती पर टपकती है। दोनों नख कटार से मांस नोचते हैं, तिल तिल कर मरने के लिए। जिस ऋषि ने कहा था ज्ञान से क्षमा उपजती है, उसे मृत्यु का कोई ज्ञान न था। कपिल देवदत्त पर वार करता है, देवदत्त घुटने के बल गिर कर वहीं से कपिल पर वार करता है। दोनों घुटनों के बल युद्ध करते हैं, करते करते धरती पर लुढ़क जाते हैं। पद्मिनी दोनों गुड़ियों को सीने से चिपकाए खड़ी देख रही है, फिर गहरी नीरवता छा जाती है। थोड़ी देर बाद पद्मिनी धीरे धीरे मंत्रमुक्त से खींचती हुई दोनों लाशों के बीच आकर घुटनों के बल बैठती है।